ओम शांति। इस संसार के सभी महान लेखकों में रूस के लियो टॉल्स्टॉय का नाम हमेशा आया है। उस लेखक ने एक लघु कथा लिखी है और उस कहानी में एक दर्जी है। जो कि सिलाई का काम करता है और उसकी एक अद्भुत सी आदत है, वो रोज 1 रुपए की लॉटरी की टिकट खरीदता है और ये आदत बहुत लंबे समय की है, लगभग 20 साल से वो इस तरह से टिकट खरीदता था। वो ये भी भूल गया था कि कभी लॉटरी लगेगी, उसे ये भी याद नहीं था कि मैं ये टिकट क्यों खरीदता हूं, पर आदत पक्की थी, अभ्यास गहरा हो चुका था और एक अकस्मात अनहोनी सी घटना घट गई। एक दिन एक कार उसकी दुकान के सामने आके खड़ी हो जाती है और 2 लोग उस कार से निकलते हैं और उनके हाथों में थैले हैं, उसमें पैसा है और उससे कहते हैं, तुम ये क्या कर रहे हो, छोड़ो छोड़ो ये सब। ये कपड़ा वो उस समय एक बटन टांग रहा होता है, उससे कहते ये छोड़ो, तुम्हें लॉटरी लग गई है 10 लाख की। और जैसे ही वो सुनता है 10 लाख, तुरंत दूसरे दिन दुकान को ताला मारता है, दुकान बंद, और चाबी लेता है और सामने कुआ होता है, उस कुएं में चाबी फेंक देता है और अगला 1 साल अगले 1 साल में वो 10 लाख रुपए उड़ा देता है। वो हर चीज करता है जो उसने आज तक की नहीं थी, होटलों में खाना खाना, घूमना फिरना, तरह तरह की वस्तुएं पहनना जो उसने आज तक कभी किया नहीं था, वो सारे भोग वो भोगने की कोशिश करता है, परंतु भोग इतने सस्ते नहीं होते कभी, भोग कभी भी सस्ते नहीं होते। और वो कमजोर हो जाता है, चश्मा लग जाता है, अब उसे एक डंडा चाहिए जिसके आधार पर वो चलता है, उसके स्वास्थ्य पर दुष्परिणाम होता है, रोज रोज ऐसी ऐसी चीजें खाता है पीता है, शराब का आदि हो जाता है और 10 लाख रुपए ऐसे ही बर्बाद कर देता है। और जब 10 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं, 1 साल के बाद वो वापस अपनी दुकान के पास आ जाता है और दुकान में ताला लगा हुआ है, चाबी उसे याद आती है कि मैंने कुएं में फेंक दी थी। रूस की ये घटना है, रशिया, बड़ी ठंड है वहां, फिर भी कुएं में उतरता है, बर्फ जमा है, बड़ी मुश्किल से चाबी ढूंढता है और चिल्लाता है बचाओ, तो कुछ लोग आकर उसे बाहर निकालते हैं। और अब क्या था, रोज फिर से वही सिलाई का काम चालू। और मन ही मन सोचता है अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। मन ही मन सोचता है फिर से कभी भी लॉटरी नहीं खरीदूंगा। और फिर सोचता है ये भोग बड़े महंगे थे, शरीर की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। पर एक मास के बाद फिर से पुरानी आदत वापस आ जाती है और फिर से लॉटरी की टिकट खरीदना चालू करता है। और जब लॉटरी की टिकट खरीदता है तो खरीदते खरीदते भी भगवान से कहता है, भगवान फिर नहीं, फिर वैसा मत कर देना। और फिर रोज रोज लॉटरी की एक एक टिकट खरीदता है और जब भी खरीदता है यही सोचता है और याद करता है उस ठंडे पानी को जिसमें उतरना पड़ा था और जिसमें वो चाबी फेंक दी थी। और फिर से चिल्लाता है नहीं, और एक दिन फिर से एक कार आकर दरवाजे के सामने खड़ी होती है। अब तो उसे भय लगता है, क्या फिर से वही। और दो लोग उस कार से उतरते हैं और जिनके हाथों में पैसे होते हैं, वो कहता है नहीं प्रभु मेरी रक्षा करो, इस बार लॉटरी मत लगा देना। और वो दो लोग आके कहते हैं कि तुम्हें लॉटरी लगी है, वो कहता है नहीं इस बार मैं वो सब नहीं करूंगा जो पिछली बार किया था। और दूसरे दिन फिर अपने दुकान को ताला लगाते हैं और ताला लगाते लगाते कहता है कि नहीं इस बार मैं चाबी नहीं फेंकूंगा। और फिर से चाबी फेंकता है और फेंकते फेंकते कहता है कि भोग बड़े महंगे पड़े पिछली बार, ये हालत हो गई और फिर से मुझे इस पानी में उतरना नहीं है, इस बर्फीले पानी में। पर उसके बाद उसे उस पानी में उतरने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उसी साल वो मर जाता है। लॉटरी तो मिली थी पर क्या कर दिया, गवा दी। खजाना तो मिला था पर क्या कर दिया, खो दिया। फिर से खजाना मिला और फिर से विनाश की तैयारी चालू कर दी। और फिर से खजाना मिला था परंतु बर्बादी का वो रास्ता फिर से इख्तियार कर लिया। आदत बड़ी पक्की थी। जन्म जन्मांतर की सुबह की साकार मुरली तुम्हारी मोह की आदत जन्म जन्मांतर की है। तो लॉटरी तो मिली पर खो दी। हमें कौन सी लॉटरी मिली है? कल की अव्यक्तवाणी, हमें कौन सी लॉटरी मिली है? छोटा सा संसार लॉटरी नहीं गिफ्ट है। लॉटरी कौन सी मिली? दिल से कहो मेरा बाबा ये गोल्डन चांस मिला। लॉटरी कौन सी मिली? ज्ञान। भाग्य विधाता ही तुम्हारा हो गया, तुम्हें भाग्य की लॉटरी मिली। कौन सी लॉटरी मिली है? भाग्य की लॉटरी मिली है। जितना भाग्य बनाना चाहो, जितना भाग्य की लकीर खींचना चाहो उतना तुम खींच सकते हो। और कितना देरी में खींच सकते हो? समय कितना है? एक सेकेंड। क्या ये सत्यता है या अतिशयोक्ति? इज इट ट्रुथ और exaggeration. सोचा कभी इसके विषय में कौन कह रहा है? क्या उसका ये वाक्य, ये कथन सत्य है? तो लॉटरी तो मिली, परंतु कहीं हमने भी उस दर्जे की तरह बर्बाद तो नहीं कर दी? और बर्बाद करने के बाद यदि फिर से मिली तो फिर से दिन रात एक द्वंद की अवस्था है। हर मनुष्य एक द्वंद में जीता है। एक मन कहता है ये करना चाहिए, ये श्रीमत है, ये ईश्वरीय मत है, ये सभी करते हैं, ये सभी बड़ों ने किया, इसको फॉलो करना ही सर्वश्रेष्ठ है। परंतु दूसरा एक मन है जो आदत के अधीन है, दूसरा एक मन है जो संस्कार के अधीन है, दूसरा एक मन है जो उस मन से टकराता है। अवचेतन में छिपे कुछ ऐसे भाव है, कुछ ऐसे इमोशंस है, कुछ ऐसी यादें हैं, कुछ ऐसे दर्द है जो आत्मा को एक वॉर लाइक सिचुएशन में रखता है, इधर और इधर। कभी ये सोचता है तो कभी वो सोचता है, कभी ये करना है तो कभी वो करना है, और इसी द्वंद में जीता है। और फिर जब जब वो करता वो है जो नहीं करना चाहिए था, पश्चाताप करता है। और पश्चाताप भी ऐसा सूक्ष्म है, और पश्चाताप भी इतना अदृश्य है कि किसी को बता भी नहीं सकता। और वो यदि बड़ी भूल है तो लज्जा भी है। हमें बाबा से जो जो मिला, हर एक यदि स्वयं से पूछे कि जिस दिन से वो मिला आज दिन तक, क्या मैंने उस खजाने के साथ न्याय किया है? Have I done justice to the treasures I have got? जो भगवान से मुझे खजाना मिला, जो मिल्कियत मिली, क्या वास्तव में मैंने उसके साथ न्याय किया है या बर्बाद कर दिया? समय का खजाना, पवित्रता का खजाना, खुशी का खजाना, दुआओं का खजाना, संकल्पों का खजाना, बोल का खजाना, कर्म, श्रेष्ठ कर्मों का खजाना, संतुष्टता का खजाना मैंने क्या किया? इसी मुरली में बाबा ने प्रश्न पूछा है कि तुम सर्व प्राप्ति करने आए, और कहीं ऐसा तो न हो कि यहां से जाओ और फिर सोचो कि ये नहीं ले लिया, वो रह गया था, वो लेना चाहिए था। मधुबन तो आए और सोच के आए थे कि मधुबन में जब आएंगे तो ऐसी तपस्या करेंगे कि अब तक की जो भूले थी, अब तक के जो पाप थे और विकर्म थे और ऐसे संस्कार थे जो छूट ही नहीं रहे, सब कुछ कर लिया, ऐसी कोई मेथड, ऐसी कोई विधि, ऐसी कोई टेक्निक, ऐसी कोई तकनीक छोड़ी नहीं, ऐसी कोई श्रीमत नहीं जो फॉलो नहीं की, परंतु वो आदत वहीं खड़ी है, वो संस्कार वहीं खड़ा है। सोचा था यहां आएंगे तो इस बार उसको बदल कर ही जाएंगे, परंतु यहां आकर लक्ष्य की विस्मृति, और यहां आकर वो सब नहीं कर पाए जो करना चाहिए था। और पिछली बार भी आए थे, और पिछली बार भी लॉटरी लगी थी, पर शायद फिर से ताला लगा दिया और शायद फिर से वो चाबी ली और कुएं में डाल दी और फिर से उस ठंडे पानी में उतरे थे और फिर यहां से जाकर सोचा था कि अब नहीं, इस बार नहीं, पर इस बार फिर से लॉटरी लगी और फिर से मन में द्वंद। मन से तो कह रहे हैं पर हाथ फिर से ताला लगाने में व्यस्त है और फिर से चाबी अभी फेंकने ही वाले। तो कल की अव्यक्त वाणी किस विषय पर वाणी थी? मिलन पर। किस पर थी? मिलन पर। कौन सा मिलन? भगवान और आत्माओं का मिलन। यह मिलन कैसा था? यह मिलन कैसा था नहीं, यह मिलन कैसा है? कैसा मिलन है यह? कैसा मिलन है? कल की मुरली को भूल जाओ, वैसे कैसे मिलन है वो बताओ। अनोखा मिलन है। कैसा मिलन है ये? हाँ, हमेशा के लिए तृप्त करने वाला मिलन है। कैसा मिलन है ये? 100 बातें बताओ। कैसा मिलन है ये? सारे कल्प में ऐसा मिलन कभी नहीं मिलेगा। कैसा मिलन है ये? प्यार का मिलन है। कैसा मिलन है ये? विचित्र मिलन है। कैसा मिलन है ये? अनोखा मिलन है। कैसा मिलन है ये? सर्वश्रेष्ठ मिलन है। इससे श्रेष्ठ संसार में और कोई मिलन नहीं। कैसा मिलन है ये? वो संसार के लोग शरीर के मिलन को सर्वश्रेष्ठ मिलन समझते हैं और कैसी निंदा की कड़े शब्दों में आज उस देह की बाबा ने। सुबह की साकार मुरली शायद सभी साकार मुरलियों में चली हुई सबसे कड़ी मुरली है मोह पर, जहां शब्द शब्द में क्या कहा मोह के विषय में। और कैसा मिलन है ये? अतीन्द्रिय सुख देने वाला मिलन है। कैसा मिलन है ये? सागर नदी। मिलन कैसा है ये? किसका है नहीं, कैसा है वो बताओ। विशेषण, जन जन की प्यास मिटाने वाला सर्वश्रेष्ठ मिलन है। उड़ती कला में ले जाने वाला मिलन है। कल्याणकारी मिलन है। शुभ मिलन है। पवित्र मिलन है। कैसा मिलन है ये? वही वही पॉइंट फिर नहीं बताना, इसका अर्थ आप नहीं सुन रहे थे। यही रेतुल्य मिलन है। कैसा मिलन है ये? अति प्यारा मिलन है। किसी ने प्यारा बोला, अभी अति प्यारा हो गया। और कैसा मिलन है ये? अविस्मरणीय मिलन है। वाह, अकथनीय, अनिर्वचनीय, अनस्पीकेबल, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसे शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसा ये मौन मिलन है। ऐसा ये अव्यक्त मिलन है। ऐसा ये वंडरफुल मिलन है। ऐसा ये अनोखा मिलन है। ऐसा ये महामिलन है। महान मिलन है। ऐसा ये हो गया। ऐसा ये यात्रा मिलन। ये कौन सा मिलन है? अच्छा, यात्रा करते करते मिलन। और ये कैसा मिलन है? प्रीत की रीत निभाने वाला मिलन है। और ये कैसा मिलन है? खुशियों भरा मिलन है। जन जन्म से जो विरह था, उस विरह को मिटाने वाला ये मिलन है। और कैसा मिलन है ये? हाँ, तृप्त करने वाला और संतुष्ट करने वाला। और कैसा मिलन है ये? आस पूरा करने वाला मिलन है। और कैसा मिलन है ये? मिलन कैसा है? अतुलनीय, अनोखा, विलक्षण, विचित्र, सब समानार्थी है। ये सब एक हो गया। दूसरा बताओ। सतयुग की स्मृतियां दिलाने वाला। सतयुग की स्मृतियां, अच्छा। और पति से पावन बनाने वाला। और कैसा मिलन है ये? क्या बनाने वाला मिलन है? ये राजा बनाने वाला मिलन है, महान बनाने वाला मिलन है, श्रेष्ठ बनाने वाला मिलन है, और उड़ाने वाला मिलन है, फरिश्ता बनाने वाला मिलन है, संपन्न संपूर्ण समान बनाने वाला मिलन है, बाप के समीपता का अनुभव कराने वाला मिलन है। कैसा मिलन है ये? सर्व संबंधों से परिपूर्ण रस है ये मिलन। ऐसा रस संसार में और कहीं नहीं। ये इंद्रियों को शांत शीतल बनाने वाला मिलन है। और कैसा मिलन है ये? संपूर्ण मिलन है। वाह, और कैसा मिलन है ये? बहुत ही ज्यादा ही मीठा है। स्वीट सैकरीन स्वीट स्वीटर और स्वीटेस्ट मिलन है ये। और कैसा मिलन है ये? हाँ, कैसा? निस्वार्थ। निस्वार्थ मिलन है। और कैसा मिलन है ये? आत्मा और परमात्मा का मिलन है। अच्छा, और कैसा मिलन है? चढ़ती कला हो गया। और कैसा मिलन है? बाप और बच्चों का स्नेही मिलन। और कैसा मिलन है? ये गुप्त मिलन है, अदृश्य मिलन है। ये दिखाई नहीं देता कुछ भी, एकदम अदृश्य है। प्यास बुझ गई, दूसरा बताओ। और कैसा मिलन है? ये भाग्यवान मिलन है, भाग्य के कपाट और द्वार खोलने वाला मिलन है। ये भाग्यवान बनाने वाला मिलन है। और कैसा मिलन है? शरीरी करने वाला मिलन है, देह से उपराम ले जाने वाला मिलन है। दुआ दवा क्या? सारे संसार को दुखों से छुड़ाने वाला मिलन है। और कैसा मिलन है ये? परमात्मा छत्र छाया का अनुभव कराने वाला मिलन है। और कैसा मिलन है ये? साजन और सजनी का मिलन है। वाह, और कैसा मिलन है ये? सर्व संबंध हो गया। और कैसा मिलन है ये? शक्तियों आत्मा की शक्तियां, आत्मा में शक्ति भरने वाला मिलन है, रूहानी शक्ति भरने वाला मिलन है, बल प्रदान करने वाला मिलन है, आत्मा को साहस शक्ति धैर्य से भरने वाला यह मिलन है, और संसार को भुलाने वाला मिलन है, और संसार से वैराग दिलाने वाला मिलन है, और संसार और आत्मा को फिर से उस तपस्या कुंड में झोंक देने वाला मिलन है, आत्मा को महातपस्वी बनाने वाला मिलन है। और कैसा मिलन है? बेहद अनहद, भगवान को अपने मुट्ठी में करने वाला मिलन है। वाह, साकार महावाक्य है बाबा के इन्वर्टेड कॉमा। जैसे सतयुग में तुम्हारे, जैसे सतयुग में धरती और आकाश तुम्हारी मुट्ठी में होगा, सतयुग में धरती और आकाश तुम्हारी मुट्ठी में होगा, अब स्वयं भगवान तुम्हारी मुट्ठी में है। पुरुषोत्तम मिलन है ये, सागर को हप करने वाला मिलन है। और कैसा मिलन है? पुरुषार्थ में उन्नति करने वाला मिलन है। और कैसा मिलन है? सर्व गुण की प्राप्ति कराने वाला मिलन है, अंधेरों से फिर से अस्तोमा सतगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। अमृत की प्राप्ति कराने वाला मिलन है ये, अमृत तुल्य मिलन है ये, दैट नेक्टराइन मीट। आशीर्वाद वरदान दुआए परमात्मा साथ, परमात्मा अनुभव, परमात्मा साथ, परमात्मा मदद, परमात्मा छत्र छाया, तप तपत बुझाने वाला, असंभव को संभव करने वाला मिलन है। वाह, भगवान से क्या करना? शिकायत। शिकायत शब्द अच्छा नहीं, उल्हाना शब्द थोड़ा सा बेटर है। अंदर प्राप्ति करने वाला मिलन है। विषय नैतरी नदी कुंभी पाक नर्क पापी छीछी पतित विकारी दुनिया से पार लगाने वाला मिलन है, अपने ही विकारी संस्कारों से मुक्ति दिलाने वाला मिलन है। अपने उस आदत से छुड़ाने वाला मिलन है जो सब कुछ करने के बाद नहीं जा रही है, नष्टो मोहा बनाने वाला मिलन है, ये सारे संसार से वीत राग करने वाला ये मिलन है। विनाश किसके पास? विनाश के पास कि सत्योग के पास? तो इस तरह से तो बहुत सारे नाम हो सकते, तो ये विनाश डैश 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 आपके लिए। तो इस मुरली में बाबा ने इस मिलन के बारे में 10 बातें कही है, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो बाबा किन बच्चों से मिलने आए हैं? जो मिलन की लगन में मगन है ऐसे बच्चों से मिलने आए हैं। और ये मिलन किसी एक समय का नहीं है, हमेशा का है। ये मिलन अविनाशी मिलन है, निरंतर होते ही रहे। ऐसा नहीं कि बाबा नीचे आएंगे तब ये मिलन हो, अमृत वेला उठो तो भगवान से मिलन, निरंतर उसके साथ का अनुभव। सबसे पहली बात इस मुरली के आधार से विचित्र मिलन है। इसमें बाप भी विचित्र है तो बच्चे भी विचित्र है। विचित्र अर्थात, विचित्र अर्थात जिसका कोई चित्र नहीं, विचित्र अर्थात दूसरा अर्थ अनोखा है, अद्वितीय है, अनूठा है, अलग है थोड़ा सा, पृथक है थोड़ा सा, सब जैसा नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रेंज, थोड़ा सा वियर्ड, थोड़ा सा अलग दिखने वाला मिलन है ये। ऐसा मिलन आज तक हुआ नहीं, नया है थोड़ा सा, अ न्यू किड ऑन द ब्लॉक। ऐसा ये मिलन है। तो सबसे पहली बात इस मिलन के विषय में जब आपने कही, ये विचित्र मिलन है अर्थात अदृश्य है, क्योंकि आत्मा भी अदृश्य है, परमात्मा भी अदृश्य है, दोनों के चित्र नहीं, अर्थात ये मिलन निरंतर अदृश्य रूप में होता रहे। कुछ दिन पहले मुरलियों में आया था, क्या स्नान करते हुए बाप को याद नहीं कर सकते हैं? सब कुछ करते हुए ये नई आदत डालनी है, ये नई प्रैक्टिस करनी है, उसको याद करने की, और उसे समाचार देते रहना अपना दिन भर। क्योंकि याद अमृत वेला तो है, मुरली में भी है, शाम में भी है, रात में भी है, पर जो दिनचर्या है जब आत्मा स्टेज पर है, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, बैकग्राउंड नहीं, सुबह शाम नहीं, वहां पर सब कुछ विस्मृत होता है, वहां पर जहां लाइव टेलीकास्ट चालू है तब बाबा से क्या करते रहना, कनेक्शन जोड़ते रहना, बार बार मदद लेते रहना, पूछते रहना, बात करते रहना कि ये कर रहा हूं अब तक सब ठीक है। बाबा को ये बता देना 12 बज गए अब तक सब ठीक चल रहा है, जब 2 बज गए तो कहना अब तक भी ठीक चल रहा है, 4 बज गए तो कहना अब तक तो ठीक है, कोई माया का आक्रमण अब तक तो हुआ नहीं है, और अब तक नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होना, पर तुम जरा साथ में ही रहना। बाबा कहते हैं मुझे यूज करो, यूज मी। क्या हम कर रहे हैं? शायद नहीं, क्योंकि हमें इंस्टेंट की आदत है और देहधारियों की आदत है, और देहधारी ज्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि वो तुरंत मदद करते हैं, परंतु उनकी मदद ही कभी कभी हमारे विघ्नों का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि मदद ही ऐसी कर देते हैं कि और ही फंस जाते हैं। विचित्र मिलन को निरंतर मनाते रहना, और यहां दिखावे की बात नहीं, यहां कोई आडंबर नहीं, यहां किसी को दिखाना नहीं है कि हम याद में हैं, हम याद कर रहे। याद तो गुप्त यात्रा है, सूक्ष्म यात्रा है, आंतरिक यात्रा है, द इंट्रेंसिक जर्नी, उसको उतना ही गुप्त, उतना ही हिडन, उतना ही क्लैंडेस्टीन, उतना ही सूक्ष्म बनाए रखना, ताकि वो अविरल धारा बहते रहे, बहती रहे, द अनपंक्चर्ड फ्लो ऑफ रिमेम्बरेंस, वो धारा अनइंटरप्टेड बहती रहे अंदर ही अंदर। तो ये सबसे पहली बात मिलन की, ये मिलन कैसा है, विचित्र। दूसरी बात, ये मिलन सागर और नदियों का मिलन है। सागर और नदियों का मिलन, इस समान में रहना कि मैं नदी हूं, मुझे अनेकों की प्यास बुझानी है, और जहां जहां से गुजरूंगा और जिस जिस स्थान से जाऊंगा और जिस जिस मोड़ से मुड़ूंगा, मुड़ूंगी, वहां पर हरियाली हो जाएगी। और मेरा लक्ष्य क्या है, सागर, इसलिए मैं कहीं रुक नहीं सकती, कहीं फंस नहीं सकती कि रुक जाऊं, ये पहाड़ बहुत अच्छा है, अगर रुक गई तो सागर तक नहीं पहुंच पाऊंगी। इस संसार का कोई व्यक्ति मुझे रोक नहीं सकता, कोई स्थान मुझे रोक नहीं सकता, मुझे तो बस एक ही प्यास है, सागर से मिलन की, और मैं उस सागर की ओर बढ़ रही हूं, और उसी सागर मेरा गंतव्य है, मेरी मंजिल है। किसी 18 जनवरी की मुरली में बाबा ने कहा था, आज ज्ञान सागर बाप, आज ज्ञान सागर बाप अपनी हजारों ज्ञान गंगाओं में स्नान करने आया है। क्या करने आया है, हजारों ज्ञान गंगाओं में स्नान करने आया है। कौन आया है, सागर स्वयं आया है। वैसे तो नदियां सागर की ओर जाती है, यहां सागर नदियों के पास आया है। कैसी अद्भुत बात है, ऐसी बात कभी सुनी कि नदी दूर थी उधर, नदी ने कहा मैं नहीं आऊंगी, सागर ने कहा मैं आता हूं, और सागर अब आया है। और ये भी एक विचारणीय बात है कि भगवान ने इस संसार में असंख्य वस्तुएं थी, अपनी तुलना में सबसे पहले उसने सागर को चुना, सूरज को बाद में चुना, पहाड़ को भी चुना, स्वीट का पहाड़, परंतु अपनी तुलना के लिए उसने इस संसार के किसको चुना, सागर को। क्यों, ये आप सबके लिए होमवर्क। सागर में ऐसी कौन सी विशेषता है जो भगवान ने सर्वप्रथम अपनी महिमा के लिए उस सिंधु को चुना। Why ocean? तो अभी नहीं बताना है, कम से कम 20 बातें हैं, वो सोचना, वो चिंतन करना सागर के बारे में। और ये चिंतन करने के लिए अगर जिनका शहर, घर या गांव या स्थान या सेवा केंद्र सागर के किनारे, तो सागर के तट पर जाकर बैठना, उस सागर को देखते हुए उस सागर का चिंतन करना और उस सागर की लहरों को देखना, इस सागर में ऐसा क्या है, उसी सागर से बात करना और पूछना, तो वो सागर उस सागर की जानकारी देगा। किसी ने सागर से पूछा, तुम इतने नीले क्यों हो, नीला तो मातम का रंग है, और तुम इतने उबलते क्यों रहते हो। ये दो प्रश्न पूछे किसी ने सागर से, कि तुम्हारा रंग नीला क्यों है, और नीला तो मातम का रंग है, दुख का, रिग्रेट का रंग है, तुम क्यों नीले हो और तुम उबलते क्यों रहते हो। क्या कहा होगा सागर ने, क्यों उबलते रहे। वो कहता है, मैं अपने माशुक से जुदा हूं, मेरा माशुक ही आकाश है, इसलिए उसका जो रंग है वो मेरा हो गया है, और मेरे अंदर मिलन की आग है, इसलिए मैं उबलता रहता हूं, क्योंकि अब मेरा मिलन उस आसमान से हो जाए, और कोशिश करता हूं कि मिल जाए क्षितिज पर वो आसमान, वो ही मेरा माशुक है। तो ये मिलन कैसा है, सागर का। और नदियों का, और मधुबन क्या है, उस सागर और नदियों का कंठा जहां पर हम बैठे हैं। तो यहां ये मिलन निरंतर होते रहना चाहिए। इसके लिए देहधारियों से अपने दिल को थोड़ा सा रिक्त करना है। बहुत भीड़ जमी है, भीड़ को कम करो और भगवान को वेलकम करो हृदय के अंतस में। दूसरा, तीसरा, ये मिलन ईश्वरीय परिवार के मिलन का मेला है। ये मिलन केवल आत्मा और परमात्मा नहीं, यहां ईश्वरीय परिवार भी साथ में मिलता है, क्योंकि कोई एक आत्मा से बाबा नहीं मिलते हैं, सारे परिवार से साथ साथ मिलते हैं। परिवार का मुखिया जैसे अपने परिवार से मिल रहा है, ऐसा ये मिलन मेला है। तो इसका भी नशा हो कि हम किस परिवार में हैं, हम किस संसार में हैं। यहां की एक एक आत्मा भगवान द्वारा, गॉड सिलेक्टेड, गॉड इलेक्टेड, गॉड चोजन है, चुना है उसने। देखा होगा जरूर कि इसमें ये खूबी है और ये खूबी और किसी में भी नहीं है, इसके लिए ये मेरे काम का है, चुना उसने ऐसे पकड़ के और इधर रख दिया गुलदस्ते में। यू हैव नॉट चोजन मी, आई हैव चोजन यू। जीसस क्राइस्ट अपने शिष्यों से कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने चुना है तुम्हें। आई हैव पिक्ड यू अप फ्रॉम दिस वर्ल्ड, तुम्हें इस संसार से ऐसे उठाया है, क्योंकि यू डू नॉट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड। तुम मेरे लिए हो, संसार के लिए नहीं। तुम मेरे कार्य के लिए हो, संसार के कार्य के लिए नहीं। तुम्हारी विशेषता, तुम्हारे गुण, तुम्हारा हुनर, तुम्हारी सारे कुछ व्यक्तित्व में है, वो सब मेरे यज्ञ के लिए है। तो तीसरी बात, ये मिलन कैसा है, ईश्वरीय परिवार के मिलन का मेला है ये। चौथी बात, ये मिलन सर्व प्राप्ति स्वरूप का मिलन। इस मिलन में सब कुछ मिल जाता है, मनोवांछित फल प्राप्त कराने वाला मिलन है। जिसको जो चाहिए इस यज्ञ में सब मिल जाता है। किसी को इच्छा है कि थोड़ा ज्यादा प्रसिद्ध हो जाऊं, तो वो भी हो जाएगी इच्छा पूरी। किसको इच्छा है कि गुप्त रहूं, वो भी इच्छा हो जाएगी। किसको इच्छा है कि ये पुरुषार्थ विरसात हमारे काम का नहीं है, हम तो बस खाना पीना सोना, वो भी इच्छा पूरी हो जाएगी। ये चिंतन मिंतन हमें मत बताओ, ये हमारा काम नहीं है, जिसको करना है करते बैठो, उसकी भी ये भी इच्छा पूरी हो जाएगी। आज की मुरली में बिना विचार सागर मंथन किए उछल नहीं हो सकती, मुरली में आया है। तो सर्व प्राप्ति स्वरूप, सर्व प्राप्तियों में मैंने क्या क्या पाया, या अब भी वही कंगाल हूं, इस ईश्वरीय ज्ञान में सबसे बड़ा धन है याद, और सबसे बड़ी दरिद्रता है विस्मृति। जो याद में है वो धनवान, और जो भूला हुआ है वो सबसे गरीब, स्पिरिचुअल पॉवर्टी। याद के धन को बढ़ाना है, बड़ा सूक्ष्म धन है। सर्व प्राप्ति स्वरूप कराने वाला मिलन है। देखना है सारी प्राप्तियां हो रही है या कुछ कम है, और कम है तो क्यों है, और कम है तो किस लिए कम है। क्या मैं ऐसा करूं जो अब तक नहीं किया इस पुरुषार्थी जीवन में? क्या ऐसी भी कोई बातें रह गई है, क्या ऐसी भी ज्ञान की पॉइंट रह गई है जो मैंने अब तक नहीं समझी? ये कितनी रियलाइजेशन की बात है। ये मन में संकल्प लाना है कि बाबा अब मुझे वो बताओ जो मैंने अब तक नहीं किया। सब कर लिया, पर क्या इसके अतिरिक्त और भी कुछ है? और यदि है तो मुझे बताओ, और वो बताएगा, और वो बताएगा किसी के द्वारा, वो सिखाएगा किसी छोटे के द्वारा, किसी बड़ों के द्वारा, किसी साथी के द्वारा, किसी दूर की आत्मा के द्वारा, या किसी बच्चे के द्वारा। वो बताकर चला जाएगा, ये बाकी है। तुमने सब कुछ किया, ये नहीं किया है। और हमारा अहंकार ये कहता है कि मैंने सब कुछ कर लिया, पर अभी तक हमने बहुत कुछ नहीं किया है। There are many things in heaven and hell, Horatio, than are dreamt of in your philosophy. शेक्सपियर का एक पात्र अपने साथी से कहता है, अभी तुमने सब कुछ नहीं जाना है, अभी तो बहुत कुछ जानना बाकी है। चौथा, सर्व प्राप्ति स्वरूप। पांचवा, ये जो मिलन है इसमें खुले खजाने हैं और खुले भंडार है। क्या है इस मिलन में? खुले खजाने हैं और खुले भंडार है। पहला प्राप्ति के लिए कहा था, अभी भंडार के लिए कह रहे, स्थूल भी और सूक्ष्म भी। ऐसा कुछ भी नहीं जो आत्मा की वास्तविक प्यास है जो यहां न मिटे। जो झूठी प्यास है वो नहीं मिटेगी यहां, जो सच्ची प्यास है वो मिटेगी जरूर, परंतु प्यास चाहिए। चिड़िया में वो संकल्प चाहिए कि इस सागर को हब करूं, खा जाऊं इस पहाड़ को, और रेस्टलेसनेस चाहिए, एक बेचैनी, डिवाइन डिस्कंटेंट जिसको कहते, दैवी असंतोष कि मैं सब कुछ क्यों नहीं कर पा रहा, करना चाहिए, ऐसी वो कौन सी बातें हैं जो नहीं करने दे रही। जब तक बाबा आप नहीं बताओगे, मैं आपके सामने से हटूंगा ही नहीं। अच्छा संकल्प है। जब तक तुम नहीं बताओगे, बताओ मुझ में कौन सी कमी रह गई है, कौन सा अहंकार है, कौन सी अकड़ है, कौन सी ग्रंथि है, कॉम्प्लेक्स है, जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा, बता दो जल्दी। बाबा को बोलना, अधिकार से बोलना, और जिद करते हुए बोलना। बाल हट बड़ा प्रसिद्ध है संसार में भी, बच्चे हट करते हैं ना, तो बस चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए, फिर जो करना है करो। आइसक्रीम खाना है, इधर सर्दी लगी है, आइसक्रीम खाना है, अगर आइसक्रीम नहीं दोगे तो बाकी कुछ भी नहीं खाऊंगा। अब बोलो क्या करेगी मां? तो सर्व भंडार, सर्व खजाने खुले। उसके बाद में छठवी बात, जहां से हमने क्लास की शुरुआत की थी, लॉटरी। तुम्हें लॉटरी मिली है, भाग्य की लॉटरी, एक सेकंड की लॉटरी। जितनी ये रेखा बड़ी करना चाहो खर्च कर सकते हो। आज सुबह का वरदान, आज ही था ना, ब्राह्मण की जीवन पत्री। तुम्हारी जीवन पत्री में क्या है? जो हुआ अच्छा, अच्छा या थोड़ा सा खराब था, एक दो सीन छोड़ के बाकी सब ठीक, ब्रैकेट में एक दो सीन एक्सक्लूडिंग, बाकी सारा ठीक, सभी अच्छा था। सोच के बोलना, सभी अच्छा। अगर स्क्रीन पर दिखा दो वो सीन तो शायद आंखें बंद हो जाए कि नहीं, मत याद दिलाओ उस बात को, बड़ी खराब बात थी। बाबा कहते तुम्हारी जन्म पत्री में जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है और अच्छा, और जो होगा वो बहुत अच्छा, क्योंकि तुम्हारी जन्म पत्री अच्छे से अच्छी है, ये बाप की गारंटी है। आदि में देवी देवता, अब बीके, ऐसे बोला ना, ये नवीन जीवन है, ब्राह्मण जीवन अर्थात नया जीवन, यहां से शुरुआत है वरदान की। तो लॉटरी मिली है, गवानी नहीं है लॉटरी, बर्बाद नहीं कर दी। अगर कर दी तो फिर से दरवाजे पर वही कार, वही दो व्यक्ति उतरेंगे और हम कहेंगे नहीं, और फिर से ताला लगाएंगे और फिर से चाबी लेके कुएं में फेंकेंगे और फिर पश्चाताप। सातवीं बात, ये मिलन राज्य अधिकार प्राप्त कराने वाला मिलन है, जन्म जन्म का राजा बनाने वाला मिलन है, पर वहां राजा बनने से पहले यहां इंद्रियों का राजा बनना है, अपनी इंद्रियों को जीतना है। जो इंद्रियों को जीता है जिसने, वो सबसे बड़ा राजा है, यही सबसे बड़ा साम्राज्य है, यही सबसे बड़ी सत्ता है, स्वयं को जीतना, इस देह को जीतना। आज कहा है ना तो तुम्हें अपनी देह को याद करना है ना किसी और की देह को, पुरानी जूती है, मेरा इस देह में कोई मोह नहीं, तुम्हारा भी इस देह में मोह नहीं होना चाहिए। जरा सी बीमारी और हलचल चालू, और बीमारियों में ही पता चलता है अब तक कितनी साधना की थी आत्मा अभिमानी बनने की। छोटा सा दर्द और चिल्लाना चालू, तितिक्षा, शारीरिक दर्द को भी सहन करना योगी की निशानी है। राज पद का आधार भी ये मिलन है। उसके बाद में आठवां गोल्डन चांस, कौन सा गोल्डन चांस मिला है तुम्हें, कौन सा गोल्डन चांस मिला है, एक बार मेरा बाबा कह दो और दिल तख्त नशीन, पद भगवान के हृदय सिंहासन, उस पे बैठ जाए। पर ये मेरा बाबा कैसे कहना पड़ेगा, नारे लगाओ मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा, प्रभात फेरी मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा, मिल जाएगा कैसे? वो भक्ति मार्ग में दिखाया है, एक चींटी झाड़ की टाली पर है और नीचे गिरती है, नीचे तालाब है और नीचे गिरी उस तालाब में अभी डूबने वाली है और वहां से पुकारती है भागवत में है, हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल। क्या करेगी वो चींटी, कोई बचाने वाला नहीं है, अब डूबना ही है उसे, तालाब में गिर पड़ी है और आर्त पुकार निकलती है हे गोविंद, और झाड़ से एक पत्ता गिरता है और वो उसके ऊपर आ जाती है। ये दिल का सौदा है, मुख का नहीं, हृदय से निकलनी चाहिए, ऐसी निकलनी चाहिए कि बस अब वही है, जैसे द्रौपदी की पुकार निकली थी हे केशव। ऐसी पुकार, ऐसी याद, ऐसा आर्तनाद, ऐसी इंटेंस यर्निंग एंड लॉन्गिंग, तब वो आएगा, अन्यथा वो नहीं आएगा। केवल मुख पुकारे तो नहीं आएगा, जब आत्मा पुकारेगी तो आएगा। तो गोल्डन चांस मिला है, मेरा बाबा कहो, मेरा अर्थात केवल मेरा, अर्थात मेरे और कोई नहीं है, अर्थात इस संसार के किसी व्यक्ति से मेरा मोह नहीं, सब मरे पड़े हैं, इन लाशों से क्या प्यार, कौन माँ कौन बाप कौन भाई कौन बहन कौन मित्र कौन संबंधी कौन किसका, एक तू ही सहारा है, एक तू ही मेरा है, सर्वस्व तू है। तो आठवां गोल्डन चांस, और नौवां एक गिफ्ट, विशेष गिफ्ट, कौन सी गिफ्ट, सुखमयी छोटा सा संसार। इस संसार की चार विशेषता बताई, कल की अव्यक्तवाणी। सबसे पहले इस संसार में तुम अलौकिक अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हो। इस संसार में क्या करते हो? सुख के झूले में झूलते हो। दूसरा, इस संसार में तुम देह की ये जो मिट्टी है, इससे ऊपर फरिश्ता बन उड़ते रहते हो। देह की मिट्टी आकर्षित नहीं करती, मिट्टी सी भासती है। क्या इसको पकड़े और क्या इसको छूं और क्या इससे लगाव रखूं और क्या इसको याद करूं और क्या इससे मिलेगा? डस्ट थाउ आर्ट एंड टू डस्ट थाउ रिटर्नेस्ट। ये देह इस मिट्टी में मिल जाएगा, फिर तीसरी बात, इस संसार में पत्थर बुद्धि और पत्थरों से तुम क्या हो जाते हो? पार हो जाते हो, ऊपर चले जाते हो। और लास्ट, ज्ञान रत्नों से खेलते रहते हो। क्या करते हो? इस संसार में रत्नों से खेलते हो। इसी में साथ तीसरा ही पॉइंट कंबाइंड है ये। चौथा है परमात्मा साथ। तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बोलू, तुम्ही से सुनू, सुनू तो तुम्हारा सुनू, बोलू तो तुमसे बोलू, देखू तो केवल तुमको, खाऊ तो केवल तुम्हारे लिए, और श्रीमत पर कदम से कदम चलना, उसकी श्रीमत पर चलना, उसका साथ प्रीत की रीत निभाना। तो ये नौवीं बात थी। और दसवीं और लास्ट, ये मिलन मनाना अर्थात महान बनना। तो ये ऐसी 10 बातें थी। छोटी सी मुरली थी परंतु बड़ी गहरी मुरली थी। ऐसे अलौकिक मिलन मनाने वाले बच्चों को, अब आप बोलते जाओ, ऐसे निरंतर खुशी के गीत गाने वाले बच्चों को, ऐसे आज्ञाकारी बच्चों को, ऐसे सपूत बच्चों को, ऐसे ऐसे सुपात्र बच्चों को, ऐसे जो मुरली सुनी उसके आधार से बोलो, ऐसे ऐसे विचित्र मिलन मनाने वाले बच्चों को, ऐसे सर्व प्राप्ति स्वरूप बच्चों को, ऐसे गोल्ड लॉटरी प्राप्त करने वाले बच्चों को, ऐसे गोल्डन चांस लेने वाले बच्चों को, ऐसे विशेष गिफ्ट को प्राप्त करने वाले बच्चों को, ऐसे महान बनने वाले बच्चों को, ऐसे सर्व प्राप्ति स्वरूप बच्चों को, ऐसे विश्व का राज्य अधिकार प्राप्त करने वाले बच्चों को, ऐसे खुशियों के झूले में झूलने वाले बच्चों को, फरिश्ता बन उड़ने वाले बच्चों को, ऐसे मिट्टी से वैराग वाले बच्चों को, मिट्टी से खेलना जिन्हें पसंद नहीं है, ऐसे रत्नों से खेलने वाले बच्चों को, ऐसे ऐसे परमात्मा साथ का अनुभव करने वाले बच्चों को, ऐसे एक से सर्व प्राप्ति करने वाले बच्चों, और ऐसे ही जब स्पिरिचुअल मार्केट और सुपर बाजार में आए तो सारा कुछ ले जाना, नहीं तो वहां जाके पता चलेगा ये तो लिया ही नहीं, ये तो खजाना रह गया सूटकेस फुल ऐसे 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 लास्ट को ये एक पावरफुल बात बता दो, ऐसे गोल्डन चांस लेने वाले बच्चों को, ऐसे परमात्मा दिल तख्त नशीन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।